दसवां अध्याय। वियतनाम के क्षेत्र में चंपा का राज्य और उसका राजनीतिक इतिहास। पहला, चंपा का राज। वर्तमान समय में जू प्रदेश दक्षिणी वियतनाम का राज्य कहते हैं, प्रायः वे ही प्राचीन काल में चंपा के हिंदू या भारतीय राज्य के अंतर्गत थे। इस राज्य के पूर्व में समुद्र था और पश्चिम में पहाड़ों की एक श्रृंखला ने इसे मेकांग की घाटी से पृथक किया हुआ था। उत्तर में इसका विस्तार 18 अक्षांश तक था और उत्तरी वियतनाम के भी अनेक प्रदेश इसमें सम्मिलित थे। पर्वत श्रृंखलाओं और समुद्र से घिरा हुआ देश चौड़ाई में बहुत कम था और अनेक पहाड़ियों ने इसे ऐसे भागों में विभक्त कर दिया था जिनमें की परस्पर संपर्क बहुत कम रहता था। यही कारण है जो इस देश में अनेक स्वतंत्र एवं पृथक बस्तियां स्थापित हो गई थीं और उनका यही प्रयत्न रहता था कि वे अपने पृथकत्व को कायम रखें। इसी प्राचीन चंपा देश के निवासी दो प्रकार के थे, जातीय दृष्टि से या नस्ल में उनमें कोई भिन्नता नहीं थी। दोनों का संबंध आस्टोनीशियन नस्ल से था, पर उनका एक वर्ग सभ्यता में बहुत पिछड़ा हुआ था, वह जंगली दशा में था, जबकि दूसरे वर्ग ने सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली थी। यह सभ्य वर्ग चम कहता था, जिसका यह नाम चंपा के भारतीय उपनिवेश के कारण ही पड़ा था। भारतीयों ने इस देश में बसने से पूर्व वहां के ये मूल निवासी क्या कहते थे यह ज्ञात नहीं है, पर जब भारतीय उपनिवेशक वहां बस गए और उन्होंने चंपा को स्थापित कर लिया तो सभ्य भारतीयों के संपर्क में आकर इस देश के जिन मूल निवासियों ने अपने को सभ्य बना लिया वे चम कहने लगे। इसके विपरीत वहां के जो मूल निवासी पहले के समान असभ्य व जंगली दशा में ही रहे उन्हें मलेच्छ कहा जाने लगा। दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्र में भारतीयों ने अपने उपनिवेश बसाने कब प्रारंभ किए और उनका प्रारंभिक इतिहास क्या था यह ज्ञात नहीं है। इस विषय में प्राचीन चीनी ग्रंथ ही कुछ प्रकाश डालते हैं और चंपा के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में हमें जो कुछ भी जानकारी है उसके प्रधान साधन ये चीनी ग्रंथ ही हैं। पर बाद में संस्कृत भाषा के अभिलेख भी इस देश में मिलने लगते हैं जिनसे वहां के प्राचीन इतिहास का भी कुछ आभास मिल जाता है। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में तशी हुआंग तो नामक एक प्रतापी राजा चीन में हुआ था, जिसने न केवल संपूर्ण चीन को अपने अधीन कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की अपितु समीप के अनेक प्रदेशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का भी निर्माण कर लिया था। ले तोंकिन और उत्तरी वियतनाम के अनेक प्रदेश भी इस काल में चीनी साम्राज्य के अधीन हो गए थे। चीन के इस विशाल साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में वह प्रदेश था जिसमें चम लोगों का निवास था। ये चम बहुधा चीनी साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते थे और उत्तरी वियतनाम तथा तोंकिन के निवासी इन आक्रमणों में उनका साथ भी देते थे। इसका कारण यह था कि इन प्रदेशों के लोग भी जाति या नस्ल की दृष्टि में आस्टोनीशियन ही थे और चीनियों की तुलना में वे चम लोगों से एकता की अनुभूति रखते थे। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में चीन की राजनीतिक दशा सुव्यवस्थित नहीं रही थी। चम लोगों ने इससे लाभ उठाया और अनेक बार उसके दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण किए। 137 ईस्वी में 10,000 चम सैनिकों ने चीनी साम्राज्य के दक्षिणी प्रदेशों को आक्रांत किया और वहां के दुर्गों तथा नगरों को बुरी तरह से नष्ट किया। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक आक्रमण चम लोगों द्वारा किए गए। 192 ईस्वी में क्यू लियन नामक एक व्यक्ति ने चीन के विरुद्ध संघर्ष में अनुपम सफलता प्राप्त की और चीन की सेना को परास्त कर अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। यह क्यू लियन सियंग लीन का निवासी था और चीनी लोगों को परास्त कर उसने अपना जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था उसकी राजधानी इसने सियंग लीन ही बनाई थी। चीनी ग्रंथों में जिसे सियंग लीन कहा गया है उसका वास्तविक नाम चंपा नगरी या चंपापुर था। वर्तमान समय में जहाँ त्र क्यू नगरी की स्थिति है वहीं प्राचीन समय में चंपापुर विद्यमान था। त्र क्यू कंग नाम के कुछ दक्षिण में है। वियतनाम के संस्कृत अभिलेखों के अनुसार चंपा के प्रथम भारतीय राजा का नाम श्रीमार था। वो चोंक अभिलेख में श्रीमार राज कुल कुल नंदन राजा के आदेश से दिए गए दान का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि इस प्रदेश में प्राचीन काल में जिस भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी उसके राजा श्रीमार राजकुल के थे, जिसकी स्थापना श्रीमार नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि चीनी ग्रंथों का क्यू लियन ही संस्कृत अभिलेखों का श्रीमार था। क्यू लियन या श्रीमार के उत्तराधिकारियों के संबंध की कोई घटनाएं ज्ञात नहीं है, पर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि सियंग लिन या चंपा के ये राजा अपनी शक्ति के विस्तार में निरंतर तत्पर रहे, क्योंकि इस काल में चीन की राज शक्ति सुव्यवस्थित नहीं थी। चंपा के राजाओं ने इस दशा से लाभ उठाया और अपने राज्य को एक सुदृढ़ आधार पर स्थापित कर लिया। चीन ने इस राज्य की स्वतंत्र एवं पृथक सत्ता को स्वीकार किया, जिसके कारण 220 ईस्वी के लगभग चंपा के राजा ने अपना एक दूत मंडल किया ची तोनकिन के प्रांतीय शासक की सेवा में भेजा था। पर चंपा और चीन में मैत्री संबंध देर तक कायम नहीं रह सका। 248 ईस्वी में चंपा की एक सेना ने समुद्र के मार्ग से तोनकिन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उस अनुपम सफलता प्राप्त हुई। अनेक नगरियों पर उसका कब्जा हो गया, जिससे विवश होकर चीन की सरकार ने चंपा के साथ एक संधि कर ली और उस द्वारा क्यू स वर्तमान थुआ थियेन का प्रदेश चीन ने चंपा को प्रदान करना स्वीकार कर लिया। चीनी ग्रंथों में सियंग लिन चंपा के राजाओं के जो नाम दिए गए हैं उन सब में फन शब्द आता है, जिसे वर्मन या वर्मा का चीनी रूपांतर माना गया है। चीनी तीसरी सदी के चौथे चरण में चंपा का राजा फन हियोंग था। संभवतः वह श्रीमार का ही वंशज था। उसने प्रयत्न किया कि उत्तर दिशा में अपने राज्य का और अधिक विस्तार करे। इसमें उसने हुनान कंबोडिया की भी सहायता प्राप्त की। फन हियोंग ने चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जो 10 साल तक चलता रहा। इसमें चीन को नीचा देखना पड़ा और 280 ईस्वी में जो संधि हुई वह चंपा के पक्ष में थी। फन हियोंग के बाद उसका पुत्र फन ई चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में चीन और चंपा में मैत्री संबंध कायम रहा और फन ई द्वारा एक दूतमंडल भी चीन की राजधानी में भेजा गया। वह पहला चंपा राजा था जिसने कि चीन के सम्राट के साथ सीधा संबंध स्थापित किया था। 336 ईस्वी में फन ई की मृत्यु हो गई और उसके सेनापति फन वेन ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। फन वेन एक प्रतापी राजा था। राज्य के सब सामंतों तथा विविध कबीलों को पूर्णतया वश में लाकर उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और 340 ईस्वी में एक दूत मंडल इस प्रयोजन से चीन की सम्राट की सेवा में भेजा, ताकि चंपा और चीनी साम्राज्य की सीमा को सुनिश्चित रूप से निर्धारित किया जा सके। वह चाहता था कि हुआन सुन पर्वतमाला को चंपा राज्य की उत्तरी सीमा स्वीकृत कर लिया जाए, पर इससे चंपा राज्य में कतिपय ऐसे प्रदेश भी अंतर्गत हो जाते थे जो अत्यंत उपजाऊ तथा समृद्ध हैं। ये प्रदेश थुआ थियेन कवांग गत्री और कवांग विन्ह थे, जिन्हें चीनी लोग सामूहिक रूप से नहुत नाम कहते थे। चीन का सम्राट इन पर चंपा के अधिकार को स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर फन वेन ने सैन्य शक्ति के उपयोग का निश्चय किया। नहुत नाम के निवासी उसी नस्ल के थे जिसके की चम लोग थे। चीन का शासन उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। 347 ईस्वी में सैन्य बल द्वारा फन वेन ने नहुत नाम को जीत लिया और उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। 349 ईस्वी में चीन की एक शक्तिशाली सेना नहुत नाम को जीतने के लिए भेजी गई, पर वह चंपा की सेना द्वारा परास्त कर दी गई। चीन के विरुद्ध फन वेन ने अनुपम पराक्रम प्रदर्शित किया, पर वह स्वयं चीनी सेना से लड़ते लड़ते मारा गया। भद्र वर्मा फन वेन के बाद उसका पुत्र फन खो 249 से 380 और पौत्र फन हुआ था 380 से 413 चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इनके शासनकाल में चंपा और चीन में निरंतर युद्ध जारी रहा। 358 ईस्वी में चीनी सेनाएं चंपा नगरी तक बढ़ आईं और फन फो उनका प्रतिरोध कर सकने में असमर्थ रहा। विवश होकर उसने चीन के साथ संधि कर ली और 359 में संधि की, जिस द्वारा नहुत नाम का प्रदेश चीन को प्रदान कर दिया गया। चीन द्वारा फन फो की पराजय का प्रतिशोध उसके पुत्र फन हुआ ता ने किया और अपने शासन काल में उसने न केवल नहुत नाम को फिर से जीत लिया अपितु उत्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ वह थान हुआ तक चला आया। चीन के सम्राट द्वारा नियुक्त कियाओ चे हनोई के शासक ने फन हुआ ता की गति को अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया पर सफल नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि फन हुआ ता अत्यंत शक्तिशाली राजा था और उसके शासनकाल में चंपा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि चीनी ग्रंथों का फन हुआ ता और संस्कृत अभिलेखों का भद्रवर्मा एक ही व्यक्ति थे। धर्म महाराज श्री भद्रवर्मा नाम के एक राजा ने अनेक अभिलेख वियतनाम में विविध स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं जिन्हें चौथी सदी के अंत या पांचवीं सदी के प्रारंभ का माना जाता है। इनसे यह सर्वथा स्पष्ट है कि चौथी सदी के अंत में चंपा पर राजा भद्रवर्मा का शासन था। चीनी ग्रंथों के अनुसार यही वह समय था जबकि चंपा शासक फन हुआ था। इस दशा में इन दोनों को एक मानने की बात को असंगत नहीं कहा जा सकता। चंपा के इतिहास में राजा भद्रवर्मा का स्थान अत्यंत महत्व का है। वह अत्यंत प्रतापी राजा था और उसका राज बहुत विस्तृत था। वर्तमान समय के वियतनाम राज्य के प्रायः सभी प्रदेशों पर उसका शासन था। पर इस राजा की ख्याति का प्रधान कारण भद्रेश्वर स्वामी शिव का वह मंदिर था जिसका निर्माण उसने माइसोन नामक स्थान पर कराया था। भग्न दशा में यह मंदिर अब भी विद्यमान है। अपने नाम पर शिव की मूर्ति को भद्रेश्वर स्वामी नाम से प्रतिष्ठापित कर राजा भद्रवर्मा ने जिस परिपाटी का प्रारंभ किया था बाद के राजाओं ने भी उसका अनुसरण किया। वे भी अपने नाम पर भगवान शिव की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करते रहे। माइसोन के अभिलेख में उस जागीर की सीमाएं स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई हैं जो राजा भद्रवर्मा ने अक्षय नेवी के रूप में अपने द्वारा स्थापित भद्रेश्वर स्वामी शिव के मंदिर को प्रदान की थी और जिससे प्राप्त होने वाली आमदनी मंदिर के ही कार्य प्रयुक्त की जा सकती थी। इस अभिलेख में राजा भद्रवर्मा के लिए चातुर्वेद विशेषण का भी प्रयोग किया गया है जिससे सूचित होता है कि वह चार वेदों का ज्ञाता था। गंगाराज चीनी ग्रंथों के अनुसार फन हुआ ता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ती चेन था जो अपने पिता की मृत्यु 413 ईस्वी के पश्चात चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ती चेन का एक भाई था जिसका नाम ती काई था। किसी कारणवश वह अपनी माँ को लेकर चंपा से कहीं अन्यत्र चला गया जिससे ती चेन को बहुत दुख हुआ। उसने बहुत प्रयत्न किया कि ती काई माँ को साथ लेकर स्वदेश लौट आए पर वह सफल नहीं हुआ। निराश होकर चंपा का राज उसने अपने भतीजे को सौंप दिया और स्वयं भारत चला आया। चीनी ग्रंथों की इस कथा की पुष्टि 7वीं सदी के एक संस्कृत अभिलेख से भी होती है जिसे राजा प्रकाश धर्म ने उत्कीर्ण कराया था। 657 ईस्वी के अभिलेख में चंपा के राजाओं की वंशावली भी दी गई है। यद्यपि यह खंडित दशा में है तब भी इससे यह अवश्य ज्ञात हो जाता है कि गंगाराज नामक एक राजा अपने भतीजे को राज सौंपकर जाह्नवी के तट पर जा बसा था ताकि वहां गंगा के दर्शन का सुख प्राप्त करता रह सके। गंगाराज इति श्रुतो नृपगुण प्रख्यात वीर्य श्रुति राज्यम दुस्सत्य ज प्रग्रहे गंगा दर्शनजम सुखम महदिति प्रायदितो जाह्नवीयम। चीनी ग्रंथों का ती चेन और अभिलेख का गंगाराज एक ही व्यक्ति है यह कल्पना सर्वथा संगत है। फन यंग माई ती चेन या गंगाराज के चंपा से चले जाने पर वहां अव्यवस्था फैल गई और गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया। इस दशा का अंत फन यंग माई द्वारा किया गया जो अपने विरोधियों का अंत कर 420 ईस्वी में चंपा के राज सिंहासन पर अधिकार करने में समर्थ हुआ। फन यंग माई किस कुल का था यह ज्ञात नहीं है पर भद्रवर्मा तथा गंगा राज के कुल के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। यंग माई के बाद उसका पुत्र चंपा का राजा बना। इसका नाम भी यंग माई ही था अतः इसे यंग माई द्वितीय कहना उपयुक्त होगा। चीन और चंपा का संघर्ष इन राजाओं के शासनकाल में जारी रहा। 431 ईस्वी में यंग माई द्वितीय ने 100 जहाजों का एक बेड़ा नहुत नाम पर समुद्र मार्ग द्वारा आक्रमण करने के लिए भेजा। नहुत नाम पहुंचकर चंपा के सैनिकों ने जो लूट मार मचाई उससे वहां का चीनी शासक बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने एक शक्तिशाली सेना जल और स्थल मार्गों से चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई और फन यंग माई द्वितीय ने उसे परास्त कर दिया। जब यह समाचार चीन के सम्राट को ज्ञात हुआ तो उसने चंपा को काबू में लाने का निश्चय किया। कई वर्षों की तैयारी के पश्चात एक बड़ी चीनी सेना तान हो चे नामक सेनापति के नेतृत्व में चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। निरंतर आगे बढ़ती हुई चीनी सेना 446 ईस्वी में क्यूसू पहुंच गई और उसका घेरा डाल दिया। क्यूसू का दुर्गपाल फन फूलोंग था। उसने बड़ी वीरता से चीनी सेना का मुकाबला किया पर यह उसके सामने नहीं टिक सका। न केवल फन फूलोंग को अपितु क्यू लू के सब वयस्क निवासियों को चीनियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और वहां से अनंत धनराशि लूट के रूप में चीनी सेना से प्राप्त की। तान हो चे केवल क्यूसू को हस्तगत करके ही संतुष्ट नहीं हो गया, वह निरंतर आगे बढ़ता गया और राजा फन यंग माई द्वितीय को परास्त कर चंपा नगरी पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चीनी सेना ने चंपा नगरी को बुरी तरह से लूटा, वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी मूर्तियों को पिघलाकर धातु के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये मूर्तियां बहुमूल्य धातुओं द्वारा निर्मित थीं। चीनी ग्रंथों के अनुसार जो लूट चंपा नगरी से चीनी सेना ने प्राप्त की थी उसमें 125,000 मन के लगभग शुद्ध सोना भी था। अपने देश तथा राजधानी की इस दुर्दशा से यंग माई द्वितीय को बहुत दुख हुआ और 446 ईस्वी में शोक संतप्त दशा में उसकी मृत्यु हो गई। चंपा नगरी को ध्वंस कर वहां से अपार धन संपत्ति प्राप्त कर चीनी सेना स्वदेश वापस लौट गई। चंपा राज पर स्थायी रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लेने का प्रयत्न उसने नहीं किया। फन यंग माई के बाद उसका पुत्र और पौत्र क्रमशः चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उसके पुत्र का नाम ज्ञात नहीं है पर उसका पौत्र फन चेनी चेंग था जिसने की चीनी के प्रति मैत्री की नीति का अनुसरण किया और कम से कम 3 बार 455, 458 और 472 ईस्वी में चीन के सम्राट की सेवा में बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ दूतमंडलों को भेजा। भेंट उपहारों को प्राप्त कर चीन का सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चंपा के राजदूतों को अनेक सम्मान सूचक उपाधियों से विभूषित किया। फन चेंग चेंग की मृत्यु के पश्चात चंपा के राज में फिर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई जिससे लाभ उठाकर फन तांग केन चुएन नामक व्यक्ति ने राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यह फुनान के राजा जय वर्मा का पुत्र था और किसी जघन्य अपराध के कारण इसे जय वर्मा द्वारा देश से बहिष्कृत कर दिया गया था। चुनान से तांग केन चुएन चंपा चला आया था और वहां की अव्यवस्थित दशा से लाभ उठाकर उसने शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। पर तांग केन चुएन देर तक चंपा की राजगद्दी पर नहीं रह सका। फान यंग माई द्वितीय के अन्यतम पौत्र फन फूनोंग ने उसे परास्त कर दिया और शासन च्युत कर स्वयं राजसिंहासन को प्राप्त कर लिया। फन चुनोंग ने 491 से 498 ईस्वी तक राज किया। उसके तथा उसके 3 उत्तराधिकारियों के शासनकाल की कोई उल्लेखनीय घटना ज्ञात नहीं है। इनमें से अंतिम पी तसुए पमो विजय वर्मा था जिसका शासनकाल 520 से 529 ईस्वी तक था। चीन के साथ इस राजा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उसने 2 बार अपने राजदूत चीन भेजे थे। विजय वर्मा के पश्चात रुद्र वर्मा चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह गंगाराज का वंशज था। गंगाराज किस प्रकार चंपा छोड़कर गंगा के तट पर भारत में जा बसा यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। दूसरा, गंगाराज के वंशजों का शासन। रुद्र वर्मा। विजय वर्मा के बाद जो रुद्र वर्मा चंपा का राजा बना उसने कुल का परिचय राजा प्रकाश धर्म के माइसून अभिलेख द्वारा मिलता है। इस अभिलेख द्वारा पहले गंगा राज जिसने कि अपने राज्य का परित्याग कर गंगा तट पर निवास किया था का उल्लेख कर फिर राजा मनोरथ वर्मा के विषय में लिखा गया है। पर गंगा राज और मनोरथ वर्मा में क्या संबंध था यह इस अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता। इसका कारण शायद यह है कि गंगा राज और मनोरथ वर्मा का वर्णन करने वाले श्लोकों के बीच की पंक्ति कुछ खंडित है। पर राजा विक्रांत वर्मा के एक अभिलेख में प्रकाश धर्म जो मनोरथ वर्मा का वंशज था, को गंगाराज का एक वंशज कहा गया है, जिससे यह अनुमान कर सकना असंगत नहीं होगा कि मनोरथ वर्मा भी गंगाराज का वंशज था। मनोरथ वर्मा की दोहती का पुत्र रुद्र वर्मा था। तस्य कीर्ति यशो श्री मनोरथ वर्मणः दौहित्री तनयो यो भूत श्री रुद्र वर्णमस्त तस्य। यही रुद्र वर्मा विजय वर्मा के बाद चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। चीनी ग्रंथों में ती चेन गंगाराज के बाद चंपा के जिन राजाओं का उल्लेख हुआ है, प्रकाश धर्म के माइसोन अभिलेख में दी गई वंशावली में उनके नाम नहीं पाए जाते। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि ये राजा गंगाराम के वंशज नहीं थे। रुद्र वर्मा का शासनकाल छठी सदी के पूर्वार्ध में था और चीन के सम्राट के साथ उसका संबंध मैत्रीपूर्ण था। इसीलिए उसने 529 और 534 ईस्वी में अपने दूत मंडल उसके राज दरबार में भेजे थे। शंभु वर्मा रुद्र वर्मा का पुत्र प्रशस्त धर्म था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शंभु वर्मा के नाम से चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में चीनी की राज शक्ति निर्बल हो गई थी, जिससे लाभ उठाकर शंभु वर्मा ने अपने राजदूतों को बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ चीनी दरबार में भेजना बंद कर दिया। पर जब सुई राजवंश की स्थापना के कारण चीन के शासन तंत्र में नई शक्ति का संचार हुआ, तो शंभु वर्मा ने पुनः वहां के सम्राट के साथ संबंध स्थापित किया और भेंट उपहार के साथ अपने राजदूत चीन भेजे। 595 ईस्वी में पर प्रतापी व महत्वाकांक्षी सुई वंशी सम्राट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कटिबद्ध था, इसीलिए उसने लियु फंग नामक सेनापति को चंपा की विजय का कार्य सुपुर्द किया और इस चीनी सेनापति ने एक बड़ी सेना को साथ लेकर चंपा की ओर प्रस्थान कर दिया। चंपा की सैन्य शक्ति प्रधानतया हस्तीबल पर निर्भर थी, पर लियु फंग की सेना द्वारा बाणों की जो बौछार की गई, चंपा के हाथी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। शंभु वर्मा ने चीनी सेना के विरुद्ध बहुत वीरता प्रदर्शित की, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। लियु फंग की सेनाएं चंपा राज्य में आगे बढ़ती हुई चंपा नगरी तक पहुंच गई 605 ईस्वी में, और शंभु वर्मा ने समुद्र मार्ग के से भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। लियु फंग ने चंपा नगरी को बुरी तरह से नष्ट किया। वहां के बहुत से निवासियों को बंदी बना लिया गया और सुवर्ण आदि संपत्ति के साथ 1350 में बौद्ध ग्रंथ भी वहां चंपा से अपने देश ले आया। चंपा नगरी के जिन लोगों को बंदी बनाकर वह चीन ले गया था, उनमें वे संगीतज्ञ भी थे जो फुनान से वहां आए हुए थे। लियु फंग के चंपा से लौटते ही शंभु वर्मा अपनी राजधानी में वापस आ गया। उसे अब यह भलीभांति समझ में आ गया था कि चीन के साथ मैत्री संबंध रखने में ही अपना हित है और वहां के शक्तिशाली सम्राट के सम्मुख झुक जाने पर ही वह अपने सिंहासन को कायम रख सकता है। अतः उसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा और उसके सम्राट से क्षमा प्रार्थना की। शंभु वर्मा के विषय में माइसोन के प्रकाश धन के अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि राजा भद्र वर्मा द्वारा स्थापित भद्रेश्वर स्वामी शिव का मंदिर अग्नि द्वारा भस्म हो गया था और शंभु वर्मा ने उसका पुनः निर्माण कराया था। पुनः प्रतिष्ठापित मंदिर का नाम अब शंभु भद्रेश्वर रख दिया गया और रुद्र वर्मा द्वारा अक्षय नीवी के रूप में जो जागीर इस मंदिर को प्रदान की गई थी, शंभु वर्मा ने उसकी संपुष्टि कर दी थी। भद्रेश्वर का मंदिर कब अग्नि द्वारा भस्म हुआ था यह भी अभिलेख में लिखा है, पर अभिलेख का यह स्थल खंडित है और वहां केवल युत्रेषु चतुर्षु वशु सतेषु सकाणाम वैतीतेषु ही पढ़ा जाता है। इसमें 400 के बाद जो अंक अक्षरों द्वारा अंकित किए गए हैं वे खंडित हो गए हैं, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शक संवत की 5वीं सदी में या ईस्वी सन की 6ठी सदी में किसी समय इस मंदिर का ध्वंस हुआ था। कंदर्प धर्मा शंभु वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसका औरस पुत्र कंदर्प धर्मा चंपा का राजा बना 629 ईस्वी में। वह बड़ा धर्मात्मा तथा प्रजापालक राजा था और प्रजा का अपनी संतान के समान पालन करता था। माइसोन के अभिलेख में उसके संबंध में यह लिखा गया है कि यह सुनुराव रसौ राजा प्रादुरासी न महायशा श्रीमान कंदर्प धर्मेति साक्षाद धर्म इवापर प्रजा यशस्व धर्मय व्यसन रहित पाति सुतवत। कंदर्प धर्मा के शासनकाल में चंपा के राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रही और चीन के साथ भी उसके संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। युद्ध का काल कंदर्प धर्मा के पश्चात उसका पुत्र प्रभास धर्मा चंपा की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका विवाह सत्य कौशिक स्वामी के साथ हुआ था। यह सत्य कौशिक स्वामी राजा रुद्र वर्मा का दौहित्र पुत्री का पुत्र था। संभवतः रुद्र वर्मा की पुत्री का विवाह ब्राह्मण कुल में हुआ था, इसीलिए सत्य कौशिक स्वामी को छत्र ब्राह्मण कुल कहा गया है। छत्रम कुलम ब्राह्मण मत द्वयम ही निरंतर यह प्रकटी चकार। कंदर्प धर्मा की मृत्यु के पश्चात सत्य कौशिक स्वामी ने चंपा के राज सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर प्रभास धर्मा के मुकाबले में वह सफल नहीं हो सका। अपने षड्यंत्र में असफल होकर सत्य कौशिक स्वामी ने कंबुज में जाकर आश्रय ग्रहण किया। वहां रहते हुए भी उसने अपने प्रयत्न को जारी रखा और 645 ईस्वी में प्रभास धर्मा को मारकर चंपा के राज सिंहासन को अधिकृत कर लिया। प्रभास धर्मा के कुल में जो अन्य पुरुष थे उनकी भी हत्या कर दी गई, पर सत्य कौशिक स्वामी भी शांतिपूर्वक चंपा का शासन नहीं कर सका। चंपा के प्रमुख पुरुष उसके विरुद्ध हो गए और उसे चंपा से चले जाना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी राजा कंदर्प धर्मा की पुत्री शासन का संचालन करती रही, पर यह दशा देर तक कायम नहीं रह सकी। कुछ समय पश्चात सत्य कौशिक स्वामी चंपा वापस आ गया और उसने शासन सूत्र को फिर अपने हाथों में ले लिया। 653 ईस्वी तक वही चंपा का कर्ता धरता रहा। सत्य कौशिक स्वामी का पुत्र श्री भद्रेश्वर वर्मा था और उसका पौत्र श्री जगधर्म था। श्री जगधर्म का विवाह कंबुज देश के राजा ईशान वर्मा की पुत्री सरवाणी के साथ हुआ था, जिससे उनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह प्रकाश धर्म विक्रांत वर्मा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। यह विक्रांत वर्मा 579 शकाबद या 657 ईस्वी में चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। सत्य कौशिक स्वामी का शासनकाल 653 ईस्वी तक था। अतः उसके पुत्र श्री भद्रेश्वर वर्मा और पौत्र श्री जगधर्म के शासन के लिए केवल 4 वर्ष बचते हैं। इन दोनों के शासनकाल या तो बहुत छोटे छोटे थे और या इनमें से किसी एक ने राजा का पद प्राप्त ही नहीं किया था। अनेक ऐतिहासिकों ने यह कल्पना की है कि कंदर्प धर्मा के पश्चात चंपा में जो गृह युद्ध हुए उनमें कंबुज के राजाओं का हाथ था। सत्य कौशिक स्वामी के पिता को किसी जघन्य अपराध के कारण चंपा से बहिष्कृत कर दिया गया और उसने कंबुज में जाकर आश्रय ग्रहण किया था। प्रभास धर्मा के विरुद्ध षड्यंत्र में असफल होकर सत्य कौशिक स्वामी ने भी कंबुज में शरण ली थी और उसके पौत्र जगधर्म का विवाह कंबुज की राजकन्या के साथ हुआ था। ये सब बातें संकेत करती हैं कि चंपा के राज सिंहासन के संबंध में जो संघर्ष कंदर्प धर्मा की मृत्यु के पश्चात हुआ उसमें कंबुज देश के राजकुल का हाथ था। प्रकाश धर्म विक्रांत वर्मा, इस राजा का एक अभिलेख माइसोन के मंदिर के एक फलक पर उत्कीर्ण है, जिससे चंपा के पूर्ववर्ती राजाओं के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। गंगाराज के वंशजों का जो वृतांत हमने ऊपर दिया है वह प्रधानतया इसी अभिलेख पर आधारित है। इस अभिलेख के अनुसार इस राजा ने चंपा नगरी में श्री प्रभासेश्वर का प्रतिष्ठापित किया था और ईशानेश्वर श्री शंभु भद्रेश्वर तथा श्री प्रभासेश्वर की सतत पूजा के निमित्त बहुत सा दान पुण्य किया था। ईशानेश्वर और श्री शंभु भद्रेश्वर के मंदिर चंपा में पहले से विद्यमान थे, पर श्री प्रभासेश्वर का मंदिर श्री राजा प्रकाश धर्म विक्रांत वर्मा ने बनवाया था। इन तीनों मंदिरों में निरंतर पूजा पाठ होता रहा, इसी प्रयोजन से इस राजा ने अनेक व्यवस्थाएं की थी। एक अन्य अभिलेख में इस राजा द्वारा कुबेर के निमित्त दिए गए दान का उल्लेख है और इसी राजा का एक अभिलेख खनहुआ में मिलता है जिसमें शिव की पूजा के विषय में लिखा गया है। प्रकाश धर्म विक्रांत वर्मा के शासनकाल में चंपा में शांति और व्यवस्था कायम रही और चीन के साथ उसका संबंध मैत्रीपूर्ण था और कम से कम 3 बार उसने अपने राजदूत चीनी सम्राट की सेवा में भेजे थे। नरवाहन वर्मा, प्रकाश धर्म विक्रांत वर्मा के बाद नरवाहन वर्मा चंपा का राजा बना। इस राजा का उल्लेख 653 शक संबद्ध से 731 ईस्वी में उत्कीर्ण विक्रांत वर्मा द्वितीय के अभिलेख में आया है और वहां इसके विषय में यह लिखा है कि इसने शंभु वर्मा द्वारा बनवाई गई एक वेदी के बाह्य भाग को सोने और चांदी के पत्रों से मढ़वाया था। इस राजा का शासनकाल 687 ईस्वी के बाद माना जाता है। विक्रांत वर्मा द्वितीय, यह नरवाहन वर्मा के बाद चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 731 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया हुआ इसका जो अभिलेख मिला है उसमें इस राजा द्वारा लक्ष्मी की एक मूर्ति की स्थापना का भी उल्लेख है। रुद्र वर्मा द्वितीय, गंगा राज के जिन वंशजों ने चंपा का शासन किया था उनमें रुद्र वर्मा द्वितीय अंतिम था। उसने 749 ईस्वी में अनेक बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ अपना दूत मंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजा था। रुद्र वर्मा द्वितीय 757 ईस्वी तक चंपा के राज सिंहासन पर विराजमान रहा और उसके साथ उस राजवंश का अंत हो गया जिसका प्रारंभ गंगाराज के साथ हुआ था। इस वंश के राजाओं के अभिलेख माइसोन एवं उसके समीपवर्ती स्थानों से मिले हैं जिससे सूचित होता है कि इसके राज का केंद्र क्वांग नाम का प्रदेश था जिसमें माइसोन की स्थिति थी।